ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत से पाठ स्कंद 4 अध्याय 27 श्लोक संख्या 1। अध्याय का शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और कालकन्या का चरित्र। तो इस श्लोक संख्या 1 यहां पर लिखा हुआ है बोर्ड में, उसका पाठ करते हैं पहले। नारद उवाच एवं पुरंजनम सव्यस् मानीय वश्मानीय विभ्रमहि पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम। शब्दार्थ नारदः उवाच, नारद ने कहा इत्थम इस प्रकार पुरंजनम राजा पुरंजन को सयग पूर्णतया वशमानीय अपने वश में करके विभ्रमही अपने आकर्षण से पुरंजनी राजा पुरंजन की पत्नी ने महाराज हे राजा रेमे भोग किया रमयति समस्त तुष्टि प्रदान करती पतिम अपने पति को। अनुवाद और तात्पर्य इस प्रकार से है, महर्षि नारद ने आगे कहा हे राजन अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषय जीवन व्यतीत करने लगी। तो अनुवाद को कृपा करके दोहराइए, महर्षि नारद ने आगे कहा हे राजन अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषय जीवन व्यतीत करने लगे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार से है, शिल प्रभुपाद की जय। वन में आकट करने के पश्चात राजा पुरंजन घर लौटा और स्नान करके तथा अच्छा भोजन कर लेने के बाद उसने अपनी पत्नी को ढूंढा। जब उसने देखा कि वह बिना बिस्तर के भूमि पर लेटी है और कोई उपयुक्त वस्त्र धारण नहीं किए है तो वह अत्यंत दुखी हुआ। तब वह उसके प्रति आकृष्ट हुआ और फिर उसके साथ में रहकर भोग करने लगा। इसी प्रकार से संसारी जीवन संसारी जीव पाप कर्म में प्रवृत्त रहता है, उसके पाप कर्म पुरंजन द्वारा किए गए आखेट के समान है। पाप में जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है, यथा व्रत यज्ञ तथा दान। इस प्रकार मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर अपनी मूल कृष्ण चेतना को भी जगा सकता है। घर आकर स्नान करके भोजन कर लेने, तरोताजा होने तथा अपनी पत्नी अपनी स्त्री को खोज करने पर पुरंजन को अपने पारिवारिक जीवन का चेत हुआ। दूसरे शब्दों में वेदों में आदिष्ट निर्दिष्ट गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तरदायित्व पूर्ण जीवन से अच्छा है। यदि कृष्ण चेतना में स्त्री तथा पुरुष मिल जाएं और शांतिपूर्वक रहें तो अति उत्तम है, किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अधिक आसक्त रहकर अपने जीवन कार्यों को भूल जाता है तो भौतिक जीवन की उलझने फिर शुरू हो जाएंगी। इसी प्रकार से इसीलिए श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुत की है अनासक्तस्य विषयान्। भक्ति सामर सिंधु 1255। पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रह सकते हैं। पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को वैदिक आदेशों के अनुसार धार्मिक तथा श्रद्धावान होना चाहिए। ऐसा संयोग उत्तम होता है, किंतु यदि पति विषय भोग के कारण पत्नी के प्रति अधिक आसक्त होता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। स्त्रियां सामान्यतः अधिक कामुक होती हैं। कहा जाता है कि स्त्री की काम वासना पुरुष की अपेक्षा 9 गुनी प्रबल होती है, तथा पुरुष का यह कर्तव्य है कि वह स्त्री को सुंदर आभूषण भोजन तथा वस्त्र प्रदान करके तथा उसे धार्मिक कृत्यों की ओर उन्मुख करके अपने वश में रखे। निस्संदेह स्त्री की संतान भी होनी चाहिए, इससे वह पुरुष के लिए बाधा न बनेगी। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति काम वासना से आकृष्ट होता है तो वह ग्रस्त जीवन घृणित बन जाता है। महान राजनीतिक चाणक्य पंडित ने कहा है, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु होती है। निस्संदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती है, भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदरी न प्रतीत हो, किंतु पति के लिए है तो वह अत्यंत सुंदरी होती है, क्योंकि वह उसे बहुत अधिक आकृष्ट होता है। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यधिक सुंदरी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार 2 प्रकार के गुणों, रजगुण तथा तमगुण से मोहित है। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजगुणी और मंद बुद्धि होती हैं, अतः मनुष्य को उनके रजो तथा तमोगुणों के वश में नहीं होना चाहिए। भक्तियोग करने से मनुष्य सदुगुण पद को प्राप्त हो सकता है। यदि सदुगुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुणी पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचता है। वह रजो तथा तमोगुणों को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी बन जाती है जो कि सदुगुण में स्थित होता है। ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। तब स्त्री तथा पुरुष दोनों की बुद्धियां मिलकर अच्छी तरह से कार्य करने लगती हैं और वे आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति कर सकते हैं। अन्यथा पति अपने पत्नी के वश में रहकर अपने सत्वगुण को खोकर रजगुण तथा तमोगुण के अधीन हो जाता है। इस प्रकार सारी स्थिति दूषित हो जाती है। निष्कर्ष यह निकला कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्व पूर्ण पापमय जीवन से श्रेयस्कर होता है, किंतु यदि पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाता है तो पुनः भौतिक जीवन का बंधन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता जाता है। इसीलिए वैदिक प्रणाली के अनुसार कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ तथा संन्यास की संस्तुति की जाती है। ओम ज्ञान तिमिरांध्यस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभयश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा सभी लोग प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुं भुञ्जते गिरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणे परमानंद माधवं श्रीचैतन्येश्वरम् नारद उवाच इत्थं पुरंजनं संयग वशमानीय विभ्रमहि पुरंजनी महाराज रेमे रमयति पतिम् महर्षि नारद ने आगे कहा हे राजन अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करके अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषय जीवन व्यतीत करने लगी। तो सबसे पहले कुछ कहने के पहले हम यहां पर विराजे सभी वरिष्ठ भक्तों को प्रणाम करते हैं, विशेष रूप से निरंजन प्रभु। और इस श्लोक और इसके तात्पर्य पर कुछ कहने के पहले इतना जानना आवश्यक है कि यद्यपि यह जो प्रसंग है यह पति पत्नी के बीच के आकर्षण का वृतांत है और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद ने बहुत सारे ऐसे बिंदु उजागर किए हैं जिस पर आधुनिक युग के लोगों को आपत्ति हो सकती है। विशेष रूप से आधुनिक युग की जो स्वच्छंद प्रकृति की महिलाएं हैं उनको आपत्ति हो सकती है। तो हम तो ब्रजधाम में बैठे हैं और यहां पर जो माताएं विराजमान है वो ये सोच करके इस तात्पर्य को और इसके आने वाले वृतांत को स्वीकार करें कि जो शास्त्र हैं वो सत्य कहते हैं और जो साधु हैं वो भी सत्य कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जैसे जो परमहंस प्रकृति के जो संत हैं वो भी सत्य कहते हैं। तो जब प्रभुपाद कहते हैं कि स्त्रियां मंद बुद्धि होती हैं सामान्यतया तो बहुत सारे स्वच्छंद प्रकृति की और विशेष रूप से जो मुक्तिवादी महिलाएं हैं आधुनिक युग की वो आपत्ति करती हैं इस प्रकार की वार्ताओं पर इस प्रकार के कथनों पर आपत्ति करती हैं। लेकिन हमें इसको इस प्रकार से ग्रहण करना है कि प्रभुपाद इस शास्त्र की बात कहते हैं और जो शास्त्रों में लिखा है वो तो भगवान की वाणी है और जो भगवान ने कहा है वो सत्य है। तो जैसे प्रभुपाद ने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया तो इस सिद्धांत से कि हम ये शरीर नहीं है। तो जब हम इस दृष्टि से इस श्लोक को और इसमें आने वाले तात्पर्य को समझेंगे तो ये आसान हो जाएगा। हम इस शरीर नहीं है तो हो सकता है हम मनुष्य की शरीर में बैठे हैं और पुरुष के शरीर में या स्त्री के शरीर में, लेकिन हम इस शरीर नहीं है। यह हमारी असली पहचान नहीं है। हमारी असली पहचान है जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्य दास। ठीक है, तो ये भूमिका थोड़ी आवश्यक थी क्योंकि ऐसा देखने में आया है विशेष रूप से कि मुक्तिवादी जो फेमिनिस्ट मूवमेंट कुछ समर्थन करने वाली महिलाएं हैं वो इस प्रकार के कथनों पर आपत्ति करती हैं कि प्रभुपाद जी ये रूढ़िवादी बात करते हैं। ये रूढ़िवादी बात नहीं है, शास्त्र की बात है। चलिए आज के प्रसंग पर चलते हैं। तो राजा पुरंजन, इनका विवाह हो गया पुरंजनी से, और ये जो प्रसंग है इसको एक प्रकार का रूपक है, उपमा दी गई है यहां पर, और जिसको अंग्रेज में एलोगोरी कहते हैं। तो उदाहरण देकर के नारद मुनि समझा रहे हैं महाराज प्राचीन बहिष्यत को। ये उदाहरण है पुरंजन का, और बहुत सुंदर उदाहरण है, क्योंकि इस उदाहरण को समझने से व्यक्ति शरीर के आकर्षण से, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो सकता है। हम किसी भी शरीर में क्यों ना हो, चाहे पुरुष के या स्त्री के शरीर में क्यों ना हो, इस प्रसंग को पढ़ लेने से आदमी उस आकर्षण से मुक्त हो सकता है। तो राजा पुरंजन का विवाह हो गया पुरंजनी से। विवाह में जिस प्रकार से होता है कि पति पत्नी आपस में एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं और भौतिक सुख का भोग करते हैं। विशेष रूप से जो पति है वह बाहर जाकर के कुछ व्यापार करता है, कुछ कार्य धंधा करता है, और फिर धन अर्जित करता है। धन अर्जित करके फिर सामग्री घर लाता है, पति उसको बनाती है उससे, और घर को साफ सुथरा रखती है, उससे विभिन्न प्रकार की सामग्री बनाती है, पति को परोसती है, पति उसको खाता है और खा करके फिर सुख भोग करता है। खाने के बाद में फिर पति पत्नी दोनों सुख भोग करते हैं। तो इस तरह की ये कथा है। तो देखने में तो ये लगता है इसमें क्यों कौन सी बड़ी बात है, ये तो होता ही है ऐसा। पति पत्नी इस प्रकार के सुख भोग करते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात है वो है कि नारद मुनि जैसे जो महान भक्त हैं और सुखदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त हैं, वो पुरंजन की इस कथा को क्यों कहेंगे? महाराज परीक्षित जिनके पास केवल 7 दिन का समय, वो एक कथा को सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस कथा में कृष्ण भक्ति छिपी है। किस प्रकार से कृष्ण भक्ति इस प्रकार से छिपी है कि जब तक हम शरीर के बंधन से मुक्त नहीं होते, शरीर के आकर्षण से मुक्त नहीं होते, तब तक कृष्ण में आकर्षण नहीं होगा। तो जिस मात्रा में हम शरीर के प्रति आकर्षित हैं, उसी मात्रा में हम कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते। दूसरे प्रकार से, जिस अनुपात में हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं, उसी अनुपात में हम संसार के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो कृष्ण के प्रति आकर्षण, संसार के प्रति विकर्षण। संसार के प्रति आकर्षण, कृष्ण के प्रति विकर्षण। तो इसमें कृष्ण भक्ति छिपी है, क्योंकि ये कथा इसी आकर्षण विकर्षण की बात करती है, जिसको कहते हैं राग विराग, उसकी बात करती है। तो राजा पुरंजन को अपनी पत्नी में राग है, और उस राग के कारण इस राजा को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ेंगे। तात्पर्य श्री प्रभुपाद उदाहरण देते हैं चाणक पंडित जी का। चाणक पंडित वो कहते हैं ऋणकर्ता पिता शत्रु, जो पिता बहुत सारा ऋण लेकर के अपना शरीर त्याग कर देता है, ऐसा पिता शत्रु है, क्योंकि उसके बच्चों को, उसके पुत्रों को पूरा ऋण चुकाना पड़ेगा। अगर पुत्रों के पास उतना धन नहीं है तो जो ऋण दे, जिन्होंने ऋण दिया है, ऋणदाता है, वो बहुत सारे कई प्रकार के कष्ट देंगे। तो इस तरह से वो पिता शत्रु हो गया, क्योंकि वो ऋण दे करके, ऋण छोड़ करके चला गया। माता च व्यभिचारिणी, जो माता अपने पुत्रों के समक्ष व्यभिचार करती है, पति को छोड़कर के अन्य पुरुषों से समागम करती है, ऐसी माता भी शत्रु हो गई, क्योंकि इससे पुत्रों को बहुत जलन होती है। और ऐसा देखा गया है कई बार कि जिन स्त्रियों के वयस्क पुत्र हैं, उन पुत्रों के रहने के बाद भी वो अन्य पुरुषों से संपर्क करते हैं, और जो पुत्र हैं वो देखते हैं उनको बहुत जलन होती है, फिर वो या तो उस व्यक्ति की हत्या कर देते हैं या घर छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसी माता भी शत्रु हो गई जो अपने वयस्क पुत्रों के समक्ष व्यभिचार करती है। फिर प्रभुपाद जी ने जो तीसरी पंक्ति उसको यहां उद्धृत किया है, भार्या रूपवती शत्रु। स्त्री अगर रूपवती है, बहुत सुंदर है, तो वो भी शत्रु हो गई। इसका अर्थ ये नहीं है कि आज से जो रूपवती माताएं हैं जिनको भगवान ने अच्छा रूप दिया है वो अपने को कुरूप बनाने में लग जाएं, ऐसा नहीं। जैसा भगवान ने शरीर दिया है उसको अच्छे से रखना, उसको सजा करके रखना और उसको स्वस्थ रखना, ये कर्तव्य है। लेकिन भार्या रूपवती शत्रु, जो स्त्री बहुत रूपवती है वह भी शत्रु हो गई। शत्रु हो गई का अर्थ है कि वो कष्ट प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जैसे द्रौपदी अत्यंत रूपवती थी, तो उसका परिणाम क्या हुआ कि पांडवों को बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि द्रौपदी को पाने के लिए दुर्योधन, कर्ण, शल्य सारे के सारे राजा महाराजा सभी गए थे। द्रौपदी का जब स्वयंवर हुआ तो सारे राजा महाराजा वहां गए थे, लेकिन उनमें केवल अर्जुन ही द्रौपदी को वरण कर सका। तो बहुत सारा कष्ट हुआ पांडवों को, क्योंकि द्रौपदी अत्यंत रूपवती स्त्री थी। इसमें द्रौपदी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसके रूप, परंतु उसके रूप के कारण बहुत सारा कष्ट झेलना पड़ा पांडवों को। माता सीता अत्यंत रूपवती थी, तो चाणक्य पंडित कहते हैं अति रूपेण वै सीता, अत्यंत रूप के कारण माता सीता का हरण हो गया, क्योंकि ये सूर्पणखा जब गई इसने रावण को बताया कि मैंने बहुत सुंदर स्त्री को देखा है, ऐसी स्त्री सारे तीनों लोकों में नहीं होगी, और उसी स्त्री के देवर ने मेरी ये दशा की है, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम जाओ और उन्हें हरा करके उस स्त्री को ले आओ। तो वही फिर रावण के पतन का कारण हो गया। तो अतिरूपेण वै सीता, अत्यंत रूप के कारण सीता माता हरी गई। तो प्रसंग पर आते हैं कि रूप, भार्या रूपवती शत्रु, जो भार्या अत्यंत रूपवती है तो कभी कभी पति को उसके कारण बहुत सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं, और कष्ट झेलने के कई कारण हो सकते हैं। अगर पति अपने पति पर संतुष्ट नहीं है, तो अगर रूपवती है तो सोचेगी कि इससे अच्छे और भी लोग मिल जाएंगे। तो इस तरह से पारिवारिक जीवन में विघटन आ जाता है, समस्या आ जाती है। तो भार्या रूपवती शत्रु, अत्यंत रूपवती स्त्री शत्रु होती है। और पुत्र शत्रु अपंडिता, और ऐसा लड़का जो मूर्ख है वो भी शत्रु है। कहते हैं ना, हमारे यहां एक कहावत है कि पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय, पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन अर्जन करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि सुपुत्र पुत्र स्वयं ही धन को अर्जित कर लेगा। पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, और अगर पुत्र कुपुत्र है, मूर्ख है, तो फिर धन अर्जन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी आपकी मेहनत की कमाई है, परिश्रम की कमाई है, वो उसको नष्ट कर देगा। ऐसा देखने में भी आता है कि बड़े बड़े अरब खरबपति लोग भी बड़े दुखी हो जाते हैं। जैसे एक अमेरिका के बहुत बड़े खरबपति हैं वॉरेन बफेट, तो उन्होंने अपना सारा धन अभी दातव्य संस्थाओं को देना शुरू कर दिया। बहुत सारा उनके पास धन है तो उन्होंने सब धन देना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनके बच्चे उस धन की अच्छे तरह रक्षा करेंगे, उनको लगता है सब बर्बाद कर देंगे। तो अपने जीवन रहते उन्होंने सब देना शुरू कर दिया। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे धनी लोग अपने बच्चों के नाम पर एक पैसा भी नहीं छोड़ के जाते। उदाहरण के लिए एक इंग्लैंड की एक महिला है, वो बॉडी शॉप करके एक बहुत ही मल्टीनेशनल कंपनी है उसकी मालिक थी, तो उनकी दो बेटियां थी, उन्होंने उनके नाम पे एक पैसा भी नहीं रखा। मरने के पहले उन्हें कोई रोग हो गया था, तो उन्होंने मरने के पहले सारा का सारा अपना दूसरी संस्थाओं को दे दिया, अपने नाम पे कुछ भी नहीं रखा, ना अपनी दो पुत्रियों के नाम पे कुछ नहीं रखा। तो कहने का अर्थ है कि अगर पुत्र सुपुत्र है तो धन अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है, पुत्र कुपुत्र है तो भी धन अर्जित करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ लोक व्यवहार की चीजें हैं, इनका आध्यात्मिक जीवन से क्या संबंध है? आध्यात्मिक जीवन से संबंध ये है कि जो पारिवारिक जीवन है वो अगर शांत नहीं है, उसमें शांति नहीं है, तो भक्ति का साधन करना बहुत कठिन हो जाता है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि अगर कोई माता जी भक्त हो जाती हैं और उनके पति भक्त नहीं है तो परिवार में अशांति रहती है, अगर पति भक्त हो जाते हैं पत्नी भक्त नहीं है तो भी अशांति। तो कई बार लोग हमारे आंदोलन को ये आरोप देते हैं, कहते हैं ये लोग गृहस्थ जीवन को बर्बाद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इस्कॉन संस्था में भी बहुत सारे ऐसे सफल गृहस्थ हैं जहां पति पत्नी दोनों शांति से रहते हैं, दोनों भक्त हैं और बच्चों को भी भक्त बनाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी दोनों भक्त हैं लेकिन बच्चे भक्ति नहीं करना चाहते, तो उसे भी समस्या आती है। तो गृहस्थ जीवन में शांति होना आवश्यक है, और नहीं होगा तो भक्ति में भी कुछ न कुछ समस्या आती रहती है। तो कभी ये देखने में आता है कि पति घर छोड़ देता है क्योंकि पत्नी भक्त नहीं, या पत्नी घर छोड़ देती है क्योंकि पति भक्त नहीं, भक्ति नहीं करने लगे। तो भक्ति के लिए आवश्यक है कि गृहस्थ जीवन में शांति रहे। अभी इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता के उस श्लोक को उद्धृत किया है जिसमें भगवान इस शरीर को नौ द्वारों वाला एक शहर कहते हैं। नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। तो भगवान कहते हैं पांचवें अध्याय में, सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ति सुखम वशी नव द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। सभी कर्मों को अपने मन से त्याग देना चाहिए, और इसके बाद इस नौ द्वारों वाले इस शहर में, इस नगर में शांतिपूर्वक रहना चाहिए। तो नौ द्वार कौन से हो गए? दो आंख, दो कान, दो नासिका, छह, इसके बाद एक मुंह, सात, इसके बाद मूत्र द्वार और गुदा द्वार, नौ द्वार। तो ये नौ द्वारों वाला ये नगर है जिसमें हम रहते हैं। तो जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं ना, हमें शरीर नहीं है, तो हम सभी लोग इस नगर के वासी हैं और केवल किराए में रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं। जैसे कभी कभी हम किराए पर कमरा लेकर रहते हैं ना, तो कमरा हमारा नहीं है, कमरा मालिक का, किसी मकान मालिक का है, हम उसको महीने में कुछ देते हैं, किराया देते हैं, वो हमें रहने देता है। तो ये हमारा जो शरीर है, चाहे वो स्त्री का शरीर हो या पुरुष का शरीर हो, ये माता प्रकृति की देन से हमको किराए में मिला हुआ है। कितने दिन के लिए? 70 साल, 80 साल, 100 साल मैक्सिमम। इंग्लैंड में अगर कोई 100 साल का हो जाता है तो उसको वहां की जो महारानी है उसके द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मिलता है, प्रमाण पत्र, प्रशंसा पत्र मिलता है। तो ऐसा पत्र बहुत लोगों को नहीं मिलता, क्योंकि लोग आजकल 100 साल जी ही नहीं पाते। तो 70 या 80 साल के लिए ये 9 द्वारों वाला नगर हमको किराए में मिला हुआ है। अब ऊपरी इसका वस्त्र कुछ भी क्यों ना हो, चाहे स्त्री का हो या पुरुष का हो, वो कुछ भी क्यों ना हो, इस नगर में रहते हुए ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लें। क्योंकि हमको ये नगर छोड़ना पड़ेगा। अभी ये प्रसंग आएगा, इस पर आगे आएगा इसी अध्याय में, कि किस प्रकार ये जो पुरंजन है ये तो बड़े आनंद से सुखभोग कर रहा था अपनी पत्नी के साथ में, लेकिन एक दिन चन्नवेग नामक एक राजा का आक्रमण होता है और पुरंजन को वो नगर छोड़ना पड़ता है। तो ये चन्नवेग है, ये मृत्यु का संकेत है, और ये चन्नवेग हम सब पर आक्रमण करेगा, क्योंकि हम सभी लोग भी पुरंजन हैं। पुर का अर्थ हुआ नगर, तो पुरम जन इस नगर के वासी हैं। और इस नगर का नाम क्या है? ये पुरुष का शरीर या स्त्री का शरीर, ये हमारा नगर है। तो इस नगर में हम लोग रह रहे हैं, और एक दिन ये चंडवेग जिसने पुरंजन पर आक्रमण किया था वो हम पे भी आक्रमण करेगा। तो यदि हम इस नगर में रहते हुए इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था को अच्छा कर लें, विशेष रूप से अगर हम भक्ति का आचरण कर लें, तो जो चंडवेग है वो आक्रमण करे भी, इस नगर को नष्ट भी कर दे, तो हम नष्ट नहीं होंगे। हम नगर के जो वासी हैं, पुरंजन हैं, वो नष्ट नहीं होंगे अगर हम भक्ति का आचरण करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से महाराज ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को चले गए थे, तो क्या उनका नगर नष्ट हुआ? नहीं हुआ। तो ध्रुव महाराज तो एक अप्रतिम उदाहरण है। हम में से बहुत से लोग सशरीर भगवान के धाम को नहीं जाएंगे, हम में से कोई भी नहीं जाएगा सशरीर। केवल भगवान के जो विशुद्ध भक्त होते हैं या स्वयं भगवान जो होते हैं, तो वो सशरीर अपने भगवत धाम को चले जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, वो इसी शरीर से भगवान के धाम को चले गए, क्योंकि उनके शरीर में उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। लेकिन हम में से सभी लोगों को ये जो नगर है, स्त्री या पुरुष के शरीर रूपी नगर है, इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन चन्नवेग का आक्रमण होगा, अवश्य होगा, वो दिन दूर नहीं है। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद ये चंडवेग हम पर आक्रमण करेगा ही करेगा, ये निश्चित है। तो इसीलिए जो लोग बुद्धिमान होते हैं और शरीर में प्राण रहते, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्ति के लिए बिल्कुल प्रतिज्ञाबद्ध रहते हैं, हमेशा लगे रहते हैं लक्ष्य प्राप्ति के लिए। चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि मनुष्य को हर समय इस प्रकार की धारणा करनी चाहिए जैसे कि मृत्यु ने हमारी चोटी पकड़ ली है। तो जो ब्रह्मचारी लोग हैं और हैं, वो चोटी रखते हैं, हम सभी लोग चोटी रखते हैं। जो माताएं हैं वो जूड़ा बांधती हैं। तो ये सोच के रहना चाहिए कि एक दिन मृत्यु हमारा जूड़ा पकड़ेगी या चोटी पकड़ेगी, अवश्य ये निश्चित है। तो ये सोच करके सब समय भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो भक्ति में लगे रहने के कारण ध्रुव महाराज मृत्यु को जीत लिए, वो मृत्यु के सिर पर पैर रखे। जब ध्रुव महाराज हरिद्वार में भगवत धाम जाने की तैयारी में लगे हुए थे तो उन्होंने सभी ऋषियों को प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी भगवत धाम की यात्रा सफल हो। सभी ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया। तो उस समय साक्षात काल उनके समक्ष हाथ जोड़ के प्रकट हुआ। तो ध्रुव महाराज ने काल की मनस्थिति को समझ लिया कि काल क्या चाहता है। तो काल चाहता था कि इस संसार में मेरा शासन चलता है, महाकाल का शासन है इस संसार में, इस काल का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, कालो ही दुरतिक्रमम, हम चाहे सोए हुए हों या जागे हुए हों काल की गति हमेशा निरंतर चल रही है। श्रीमद् भागवत में कहा है, शास्त्र में कहा है कि उगते हुए और अस्त होते हुए सूर्य के साथ हमारे जीवन का एक दिन चला जाता है प्रतिदिन। और लोग फिर बोलते हैं आज का दिन अच्छा था, आज का दिन अच्छा नहीं था। तो दिन अच्छा हो नहीं हो वो दिन भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए। तो जो दिन भगवान की भक्ति में चला गया समझना चाहिए ये दिन अच्छा हो गया। जिस दिन भगवान की भक्ति ठीक से नहीं हुई वो समझना चाहिए आज का दिन अच्छा नहीं, बहुत बुरा था। तो ये हमारे दिन का आकलन है इस प्रकार से। तो प्रत्येक दिन को हमें अच्छा बना के रखना है। और वो दिन अच्छा बनता है जब हम भगवान का दर्शन करते हैं मंगल आरती में, इसलिए उसका नाम ही हो गया मंगला आरती, सब प्रकार का मंगल करती है। तो भगवान का दर्शन करते ही जीव का मंगल होता है। इसी वृंदावन में एक महात्मा थे तो उनकी आंखें नहीं थी, अंधे थे, लेकिन प्रतिदिन समय से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए आ जाते थे एकदम ठीक समय पर। तो एक दिन यहां ब्रज के कुछ बच्चों ने उनसे विनोद में पूछा, महात्मा जी क्षमा करना, आपकी तो आंखें हैं नहीं, लेकिन प्रतिदिन आप ठीक समय पर भगवान के दर्शन के लिए आ जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों, आप तो कभी भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा देखो बेटा मेरी आंखें नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन हमारे जो ठाकुर जी हैं उनकी तो सहस्त्र आंखें हैं, सहस्त्राक्ष कहे जाते हैं ना, उनकी तो हजारों आंखें हैं। तो मैं समय पर इसलिए आता हूं कि हमारे सहस्त्राक्षों हजारों आंखों वाले हमारे ठाकुर जी हैं वो मुझे देख लें कि मैं आ गया, तो वो देख लें कि मैं आ गया इसलिए आता हूं। तो भक्त लोग भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं और भगवान जब अपनी सुंदर वात्सल्यमयी आंखों से भक्तों को देखते हैं, जैसे आप भगवान को देखते हैं ना, तो उसी तरह से भगवान भी आपको देखते हैं। तो मंगल आरती के समय या जिस समय आप भगवान का दर्शन करते हैं मंगल में भगवान आपको देखते हैं। और भगवान के देखने से क्या होता है, भगवान के देखने से बहुत कुछ होता है, उसमें से दो हो सकता है, एक या तो व्यक्ति का अनिष्ट होता है या फिर व्यक्ति का मंगल होता है। वो कैसे, जैसे भगवान श्री राम ने क्रोध की दृष्टि से समुद्र को देखा, केवल देखा, उससे क्या हुआ, पूरे समुद्र में हलचल उत्पन्न हो गई, सारे समुद्र के जो जीव जंतु हैं मछली, मगरमच्छ, ये सारे के सारे लोग भगवान की आंखों से निकली हुई आग से जलने लगे, हुआ ना, रामायण इस प्रकार का वर्णन है। तो ये भगवान की क्रोध भरी आंखें हैं, ये देखते हैं। जैसे कहा गया है श्रीमद् भागवत में, भगवान अनंत शेष, जो भगवान संकर्षण अनंत शेष, भगवान बलराम के अवतार, जो इस पृथ्वी को और अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने सिर पर धारण करते हैं, प्रलय के समय उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है तो वो केवल गुस्से की आंखों से देखते हैं, उससे क्या होता है, सारी की सारी सृष्टि भस्म हो जाती है। तो ये तो भगवान की क्रोध भरी आंखें हैं। दूसरा, जब भक्त प्रेम पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हुए भगवान के मंदिर में उनको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए प्रवेश करता है तो भी भगवान देखते हैं तो उनकी आंखों से अमृत बरसता है। जब भगवान श्री राम युद्ध के समय अपनी वानर सेना को बड़ी प्रेम भरी दृष्टि से देखते थे तो उससे क्या होता था कि सारे के सारे बंदर, वृक्ष और वानर जो थे, जो मर चुके थे, वो फिर से जीवित हो जाते थे। रोज ऐसे हो जाता, रोज ऐसे होता था। तो इस प्रकार भगवान अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं। श्रीमद् भागवत में कुंती देवी ने प्रार्थना की है कि हमारे पास जो भी संपत्ति है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे पास जो भी संपत्ति है, सुख है, वो इसीलिए है क्योंकि आप जब भी हस्तिनापुर आते हैं तो प्रेम भरी दृष्टि से उन पर नजर डालते हैं, उन पर देखते हैं। तो भगवान के देखने से ही महाराज युधिष्ठिर का जो साम्राज्य था वो संपन्न हो गया, केवल देखने से। तो हम जब मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रेम से भगवान को देखते हैं। भगवान के दर्शन करने की भी विधि है कि उनके चरणों से भगवान का दर्शन करना चाहिए और मंदिर में जाकर के भगवान को प्रेम से देखना चाहिए, जैसे कोई माता अपने पुत्र को देखती है। तो माता जब अपने पुत्र को देखती है तो स्नेह की दृष्टि से देखती है कि मेरा बच्चा है, अभी अच्छे से बड़ा हो रहा है, मैं चाहती हूं कि और बढ़े और सब प्रकार से उन्नति की, ये प्रेम की दृष्टि है। इसी प्रकार से भगवान बड़ी वात्सल्य दृष्टि से अपने भक्तों को देखते हैं कि मेरा भक्त है, अभी मंगल आरती में आ गया, कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, भागवत सुन रहा है, इसका मंगल हो। केवल देखने से ही भक्त का मंगल होता है। तो समय हो गया, कुछ ज्यादा हम अभी कहना भी चाहें तो नहीं कह सकते। तो आज की कथा का इशार हुआ कि हम जिस शरीर में हैं, भले ही शरीर कुछ क्यों ना हो, हम सभी लोग पुरंजन के समान हैं, जो नौ द्वारों वाली इस देह में केवल किराए के निवासी हैं, किराए पर रह रहे हैं। तो शरीर हमारा इस तरीके से किराए का कमरा है, उस पर हम लोग रह रहे हैं। यदि हम भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो चंडवेग नामक जो राक्षस राजा है उसका आक्रमण भी होगा और वो हमारे शरीर को नष्ट भी कर देगा, तो भी हमारा मंगल ही होगा, क्योंकि हम भगवान की भक्ति में लगे रहने के कारण उनकी जो अमृत दृष्टि है उसके पात्र हो जाते हैं। तो हम आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रश्न पूछने का या और कोई व्याख्या करने का समय नहीं है, तो यहीं हम विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।